पृष्ठ संख्या 34। संविधान निर्माण में अग्रिम भूमिका। 4 नवंबर 1948 को संविधान सभा में डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान का मसविदा पेश करते हुए कहा, संविधान मसविदा समिति सभा के 29 अगस्त 1947 के प्रस्ताव द्वारा गठित हुई थी। सभा ने विभिन्न कमेटियां बनाई थी, उनकी रिपोर्ट और सभा की बहस को ध्यान में रखकर एक मसविदा तैयार किया गया। इसमें 315 धाराएं तथा 8 अनुसूचियां हैं। दुनिया के किसी भी देश का संविधान आकार में इतना वृहद नहीं है, जो इसका सांगोपांग अध्ययन नहीं किए हैं उनके लिए इसके विशेष और महत्वपूर्ण मुद्दों को समझ पाना कठिन है। इसे जनता की राय जानने के लिए 8 महीने तक परिचालित किया गया और उनके समय समय पर आए सुझावों का भी समावेश किया गया है। कुछ लोगों ने इसके प्रावधानों की आलोचनाएं की हैं। इसमें से कुछ आलोचना तो पूरी गैर जानकारी पर आधारित है। इन मसविदों को ठीक परिप्रेक्ष्य में समझा जा सके, इसीलिए मैं विभिन्न कमेटियों की रिपोर्ट भी सदन के अवलोकनार्थ प्रस्तुत करता हूँ। उन्होंने संवैधानिक कानून विशेषज्ञों के 2 प्रश्नों, किस पद्धति की सरकार और किस पद्धति का संविधान, का उत्तर देते हुए कहा, अमेरिकी संविधान की तरह भारत में भी प्रेसिडेंट ही सर्वोच्च होगा, लेकिन अमेरिकी और भारतीय पद्धति भिन्न होगी। वहाँ प्रेसिडेंट सर्वोच्च होता है, हम संसदीय सर्वोच्चता की पद्धति स्वीकार किए हैं। राष्ट्रपति पद्धति में कार्यपालक सारी शक्तियाँ राष्ट्रपति में होती है। हमारे मसविदों में ब्रिटेन के राजा की स्थिति राष्ट्रपति को दी गई है। यह राष्ट्र का प्रतिनिधित्व तो करता है, लेकिन देश पर शासन नहीं करता। उसके नाम से देश का शासन चलता है। यहाँ मंत्रिपरिषद के नियंत्रण में कार्यकारी संस्थाएं होंगी। यूनाइटेड स्टेट्स का राष्ट्रपति अपने मंत्रियों की राय मानने के लिए बाध्य नहीं है, लेकिन हमारे मसविदा में राष्ट्रपति को मंत्रिमंडल की राय पर चलना है। अमेरिकी राष्ट्रपति किसी मंत्री को कभी भी हटा सकता है, लेकिन भारतीय राष्ट्रपति तब तक किसी मंत्री को नहीं हटा सकता जब तक मंत्रिमंडल संसद में अपना बहुमत रखता है। अमेरिकी पद्धति कार्यपालिका और विधायिका के बंटवारे पर विकसित है, इसीलिए अमेरिका का राष्ट्रपति और उसके मंत्री सीनेट के सदस्य नहीं हो सकते। हमारा मसविदा इस सिद्धांत को नहीं मानता। हमारे मंत्री संसद के सदस्य ही होंगे, वे संसद की कार्यवाही में भाग लेंगे और वोट भी करेंगे। संसदीय पद्धति में स्थायी और जवाबदेही कार्यपालिका बनाई गई है। दुर्भाग्य से अभी तक ऐसी कोई पद्धति विकसित नहीं हो पाई है जिसमें स्थायित्व और जवाबदेही समान रूप से परिपक्व हो। आपको ऐसी पद्धति मिलेगी जिसमें स्थायित्व ज्यादा और जवाबदेही कम होगी, या ऐसी पद्धति जिसमें जवाबदेही ज्यादा किंतु स्थायित्व कम मिलेगा। 1. कंस्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट बुक -2, पृष्ठ संख्या 31, 4-11-1948। पृष्ठ संख्या 35। अमेरिकी और स्विस पद्धति में स्थायित्व अधिक किंतु जवाबदेही कम है। इसके ठीक विपरीत इसके ब्रिटिश पद्धति जिम्मेदार ज्यादा स्थायी कम है, क्योंकि अमेरिकी कार्यपालिका गैर संसदीय है। यदि वह कांग्रेस के बहुमत अथवा अल्पमत पर नहीं टिकी है, जबकि ब्रिटिश कार्यपालिका का अस्तित्व संसदीय बहुमत अल्पमत के भरोसे है। अमेरिकी कांग्रेस सरकार को बर्खास्त नहीं कर सकती, जबकि संसदीय अल्पमत के कारण ब्रिटेन में सरकार को त्यागपत्र देना होता है, जो लोग आज की स्थिति को देखते हुए राष्ट्रपति प्रणाली की वकालत कर रहे हैं, उनके लिए डॉक्टर अंबेडकर के इस भाषण को गंभीरतापूर्वक पढ़ना चाहिए। वे कहते हैं, गैर संसदीय पद्धति में जवाबदेही समयबद्ध है। अमेरिका में जनता द्वारा 4 साल 2 साल बाद सरकार के कामकाज का लेखा जोखा लिया जाता है, जबकि ब्रिटिश संसदीय पद्धति में सरकार का लेखा जोखा प्रश्नों, प्रस्तावों, अविश्वास प्रस्तावों, कार्य स्थगन प्रस्ताव व प्रेसिडेंट के उद्बोधन पर हुई बहस द्वारा रोज रोज लिया जाता है। हम लोगों ने नित्य प्रति जवाबदेह व्यवस्था को ही स्वीकार किया है। हमारे संविधान में ज्यादा स्थायित्व की जगह विशेष जवाबदेही के सिद्धांत को स्वीकार किया गया है। जहाँ तक संविधान के स्वरूप के सिद्धांत का सवाल है, संविधान एकात्मक और संघात्मक होते हैं। प्रथम में केंद्रीय सत्ता की सर्वोच्चता होती है और अधीनस्थ सर्वोच्चता के साथ अधीनस्थ इकाइयां भी सर्वोच्च होती है, अर्थात संघात्मक व्यवस्था में दोहरी पोस्टिंग होती है। हमारे संविधान में संघात्मक व्यवस्था एकात्मक रूप में है। अमेरिका में दोहरी नागरिकता है, राज्य को भी कुछ विशेष अधिकार प्राप्त हैं। हमने पूरे देश की एक ही नागरिकता स्वीकार की है, उन्होंने कहा, हमारा संविधान संघात्मक और एकात्मक दोनों है। आपात स्थिति लागू होने पर अथवा राज्यों में विशिष्ट स्थिति आने पर राष्ट्रपति उद्घोषणा द्वारा राज्यों की हुकूमत अपने हाथ में ले सकते हैं, किंतु उसी तरह राज्यों को कुछ विशेष अधिकार मिले हैं जिनमें केंद्र हस्तक्षेप नहीं कर सकता। इसीलिए संवैधानिक व्यवस्था के मामले में हमारा संविधान विश्व का अनोखा व अद्वितीय विधान है। कानून बनाने की शक्ति के मामले में ऑस्ट्रेलिया के विधान की तरह संसद और राज्यों के विधान मंडलों के कार्यों का बंटवारा भी है, और समवर्ती सूची के विषय तैयार कर दोनों को कानून बनाने के अधिकार दिए गए हैं। हमारी संघीय व्यवस्था दुनिया में अनूठी इसीलिए भी है कि हमने कार्यपालिका, न्यायपालिका व विधायिका के क्षेत्रों का विधिवत बंटवारा किया है। राष्ट्र की एकता के लिए हमने मूलभूत मामलों में समानता दर्शाया है। एक न्यायपालिका, दो मूलभूत सिविल फौजदारी कानूनों की एकता, तीन एक अखिल भारतीय सिविल सेवा। जो लोग पूछते हैं कि क्या इस संविधान में विश्व के संविधानों से अनोखी कोई चीज है, उत्तर देते हुए कहा, सैकड़ों साल पहले केवल एक लिखित संविधान बना था। अनेक देशों ने उसकी नकल पर अपना अपना लिखित संविधान बनाया। हमने अपने विधान में परिवर्तन की गुंजाइश दी है, जिसके अनुसार समय समय पर पुरानी बातों को छोड़कर समय की आवश्यकता अनुसार नई चीजें अपनाई जा सकती हैं। उन्होंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के प्रशासकीय पहलुओं की नकल करने की बात को स्वीकार किया। उन्होंने महान संविधान शास्त्रियों का उदाहरण देते हुए कहा कि संविधान के प्रति श्रद्धा और आदर से ही बहुमत का दबदबा और अल्पमत की निराशा में संतुलन कायम हो सकता है। शांतिपूर्ण ढंग से संवैधानिक लोकतंत्र संवैधानिक नैतिकता से संचालित किया जा सकता है। पृष्ठ संख्या 36। प्रशासन और संविधान दोनों का ढांचा उपयुक्त होना चाहिए। यह संभव है कि केवल प्रशासन के स्वरूप को बदलकर संविधान का संचालन रोक सकते हैं और इसे संविधान के ढांचे के प्रतिकूल खड़ा कर सकते हैं। इसी स्थिति में जनता से संवैधानिक नैतिकता की अपेक्षा होती है। संवैधानिक नैतिकता प्राकृतिक देन नहीं है, इसे विकसित करना होता है। हमारे नागरिकों को इसे सीखना होगा। भारतीय भूभाग में लोकतंत्र महत्वपूर्ण आभूषण है, क्योंकि यहाँ की मिट्टी मूलतः लोकतंत्र के प्रतिकूल है। इन परिस्थितियों में प्रशासकीय ढांचे को विधायिका के हवाले करने की जरूरत नहीं। हम लोगों ने इसके भी स्वरूप का समावेश संविधान में कर दिया है। कहा जाता है कि इस संविधान में प्राचीन भारतीय व्यवस्था को तिलांजलि दे दी गई है। प्राचीन हिंदू राज संगठनों को नमस्कार कर लिया गया है। पाश्चात्य पद्धति अपनाकर गांव और जिलों के संगठन को त्याग दिया गया है। भारतीय ग्रामीण व्यवस्था के प्रति अनुरागी दया के पात्र न सही, पर ग्राम पंचायतें दीर्घजीवी हैं। हमारे देश के इतिहास में इनका योगदान मेटकाफ के शब्दों में, एक के बाद एक सल्तनतें बर्बाद हुई, क्रांति के बाद क्रांति हुई, हिंदू पठान मुगल मराठा सिख अंग्रेज सभी हुकूमत में आए, लेकिन गांव वैसे के वैसे हैं। संकट काल में वे संगठित और किलावाद होते गए। आक्रामक सेना आई और गई। गांव के लोग अपनी चहारदीवारी में पशु चराते रहे और शत्रु बिना प्रतिरोध के जाते रहे। उन्होंने आरोपित किया कि गांव अपने में ही सिमटे रहे, इसीलिए वे जिंदा हैं। मेरी धारणा है कि ग्राम्य व्यवस्था भारत के विनाश की जड़ में है। जो लोग प्रांतीयता और सांप्रदायिकता के विरोध में बोलते हैं, वे लोग ही ग्राम्य व्यवस्था के चैंपियन बनकर सामने आते हैं। गांव क्या है? स्थानीयवाद का बड़ा तालाब, अज्ञानता का केंद्र, अल्पज्ञता तथा सांप्रदायिकता का केंद्र। मुझे खुशी है कि संविधान के मसविदे में ग्राम की उपेक्षा करके व्यक्ति को इकाई माना है। हमारे संविधान की निंदा इसीलिए भी की जाती है कि इसमें अल्पसंख्यकों को सुरक्षा दी गई है। इसमें मसविदा समिति को दोषी नहीं बनाया जा सकता। संविधान सभा जिम्मेदार है। संविधान सभा ने ऐसा करके अच्छा काम किया है। इस देश में अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक दोनों ने महत्वपूर्ण रोल अदा किया है। बहुसंख्यकों के लिए अल्पसंख्यक के अस्तित्व से इनकार करना गलत है। उसी तरह अल्पसंख्यकों का बार बार दबाव उत्पन्न करना भी गलत है। दोनों स्थिति में समाधान निकालना जरूरी है। अल्पसंख्यक के अस्तित्व को स्वीकारते हुए ऐसी परिस्थिति का निर्माण करना जरूरी है कि दोनों एक धरातल पर हो सकें। संविधान सभा ने समाधान ढूंढा है। जिन लोगों के मन में अल्पसंख्यकों के प्रति घृणा है, उनसे मैं कहना चाहता हूँ कि अल्पसंख्यक शक्ति यदि विस्फोटक हुई तो राज्य के ढांचे को तोड़ सकती है। यूरोप का इतिहास इसका साक्षी है। आयरलैंड के बंटवारे के विवाद में, जब हम संयुक्त आयरलैंड चाहते हैं, आप अल्पसंख्यक प्रोटेस्टेंट जितनी सुरक्षा चाहते हैं तो हम देने को तैयार हैं। प्रोटेस्टेंट ने कहा, सुरक्षा ले जाओ, हम तुम बहुसंख्यकों द्वारा शासित नहीं होना चाहते हैं। भारत के किसी अल्पसंख्यक ने अभी तक ऐसी बात नहीं कही है। उन्होंने सहर्ष अल्पसंख्यक हुकूमत स्वीकार की है, यद्यपि वह राजनैतिक बहुमत नहीं, सांप्रदायिक बहुमत है। यह बहुमत का बुनियादी दायित्व है कि अल्पसंख्यक के प्रति भेदभाव त्यागे। यह बहुसंख्यक के आचरण पर निर्भर है कि अल्पसंख्यक अस्तित्व में रहे या न रहे। जिस दिन बहुसंख्यक अपने से अल्पसंख्यक के प्रति भेदभावपूर्ण व्यवहार को समाप्त कर देंगे, अल्पसंख्यकों के अस्तित्व के आधार समाप्त हो जाएंगे और वे भी विशाल बहुसंख्या में अस्तित्वहीन हो जाएंगे।